हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो तारा जी, आपको नीचे करिश्मा जी बुला रही हैं, क्योंकि सभी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। तारा को वहां से भेजने के लिए मल्लिका ने झूठ बोल दिया था। तारा सोचने लगी थी, बेवकूफ काला साया, करिश्मा मॉम को तो मैंने ही काम पर लगा रखा था। तभी देखते ही देखते देखते तारा परी की आंखों के सामने मल्लिका का विजुअल आने लगा था कि मल्लिका ने किस तरह से अमन को सिड्यूस करने की कोशिश की थी। तारा परी को बहुत गुस्सा आया था। तभी तारा ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए मल्लिका की ओर देखते हुए कहा था, मिस मल्लिका, मुझे लगता है कि आपको जाकर पार्टी अटेंड करनी चाहिए, और रही बात हमारी, हम मियाँ बीवी अभी थोड़ा सा बिजी हैं, तो हम जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कहकर तारा ने मल्लिका को वहां से भागने के बारे में सोचा था। लेकिन मल्लिका भला ऐसे कैसे जा सकती थी? मल्लिका को हर हाल में तारा को अमन से दूर करना था, क्योंकि अगर वो तारा को अमन से दूर नहीं करेगी तो जो काला धुआं बनकर दानव उसकी ओर बढ़ रहा है, वो मल्लिका के साथ रिश्ता कैसे बनाएगा जब तक तारा वहां रहेगी? अब तो तारा की बात सुनकर मल्लिका को बहुत तेज गुस्सा आया था, और उसका दिल किया कि वो अपनी काली शक्ति का प्रयोग करके अभी और इसी वक्त तारा को खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त तारा उसकी बॉस थी और अमन भी उसका बॉस था, तो इस वजह से उन्हें उसकी बात माननी ही थी। तो खुद पर कंट्रोल करती हुई मल्लिका जल्दी ही वहां से बाहर तो निकल गई थी, लेकिन वो इस कमरे से आगे कहीं नहीं गई थी, बल्कि वहीं छुपकर खड़े होकर तारा के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी थी। मल्लिका सोच रही थी, जैसे ही काला दानव अमन के जिस्म में प्रवेश करेगा तो वो उस वक्त उसके साथ होगी और अमन उसके साथ रिश्ता बनाएगा। लेकिन अब तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। वहीं अमन तारा की ओर देखकर कहने लगा था, क्या हुआ, तुमने उसे इस तरह से क्यों भगा दिया? क्या तुम्हारा मन वाकई कुछ रोमांस वगैरह करने का कर रहा है? तो बता दो, मैं संगीत का फंक्शन बाद में भी ज्वाइन कर सकता हूँ, पहले मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा हल्का सा मुस्कुराकर कहने लगी थी, आपको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में अचानक से कोई भी इस तरह से मुंह उठाकर आ जाए। मल्लिका, जो कि गेट के बाहर खड़ी होकर तारा और अमन की बातें सुन रही थी, उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। अब तो उसने सोच लिया था कि आखिरकार इस मामूली से इंसान को किस बात का घमंड है, और वो सोचने लगी कि काली शक्तियों की होने वाली महारक्षक से टकराने के लिए तो अब मल्लिका ने सोचा कि एक बार अमन के साथ वो जिस्मानी रिश्ता बना ले, फिर वो इसकी बीवी को यानी कि तारा को अपनी पालतू नौकरानी बनाकर रखेगी और उसे बताएगी कि आखिर ताकत क्या होती है। कहीं ना कहीं मल्लिका को उस वक्त तारा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो वहां ज्यादा देर भी इस तरह से खड़ी नहीं रह सकती थी, तो इसके लिए उसने जल्दी ही अपनी कुछ काली शक्तियों का प्रयोग करके अपना वेश एक काले धुएं में बदल लिया था और बेसब्री से दानव के आने का इंतजार करने लगी थी। वहीं काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे दानव को अमन के जिस्म में प्रवेश करने के लिए छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं उसे तो यही लग रहा था कि अब तक तो मल्लिका अमन के पास जाकर बैठ गई होगी, तो जैसे ही अमित दानव को उसके जिस्म में प्रवेश कराएगा तो तुरंत ही वो उसे ऑर्डर करेगा कि वो भी इस वक्त मल्लिका के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाए, और बाकी सब करिश्मा जी, अमरिंदर जी, उसकी बीवी तारा, सोनल, सभी के सभी वहां पर संगीत के फंक्शन में बिजी होंगे और शोर शराबे में किसी को कोई आवाज भी सुनाई नहीं देने वाली थी। लेकिन काली शक्तियों के मालिक अमित को कहां इस बात के बारे में पता था कि तारा परी तो इस वक्त खुद अमन के साथ है, तो भला अमन किसी और के साथ जिस्मानी रिश्ता कैसे बना सकता था? वेल, अब क्योंकि करिश्मा जी को इंतजार करते हुए बहुत समय हो गया था और ऊपर से उन्हें अमरेंद्र जी की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसे उसने फंक्शन में जाने में देर की तो अमरेंद्र जी उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो सकते थे, क्योंकि अमरेंद्र जी अपने बेटे अमित के फंक्शन में किसी तरह की कोई जल्दबाजी या देरी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। वेल, अभी तो फिलहाल उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें इंतजार करना ही था, क्योंकि ये दादा महाराज का हुक्म था। वेल, तभी रीत परी, जो कि तारों को ये बताने के लिए गई हुई थी कि ऑलरेडी अमित ने उस दानव को छोड़ दिया है, तब तारा ने जल्दी से अमन से कहा था, अच्छा अमन सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है, तो प्लीज आप ना मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर तारा ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया था और उसे अपने कमरे से निकलकर सीधा कहीं और लेकर जाने के बारे में सोचने लगी थी। तारा ये देख चुकी थी कि मल्लिका इस वक्त अदृश्य धुएं के रूप में वहां मौजूद है, तो इसीलिए तारा को उसकी आंखों में भी धूल झोंकनी ही थी। इसके लिए उसने जल्दी ही सोनल परी को काली शक्तियों के मालिक अमित का वेश धारण करने के लिए कह दिया। अब जैसे ही सोनल परी ने काली शक्तियों के मालिक अमित का वेश धारण किया, अचानक से वो अमन के कमरे की ओर आने लगा था। अब मल्लिका ने धुएं रूप में जैसे ही काली शक्तियों के मालिक अमित को देखा, वो हैरान हो गई। वो सोचने लगी थी कि अमित तो उस वक्त उस काले धुएं को उस शीशी से आजाद करके इंस्ट्रक्शन देकर अमन के जिस्म में भेज रहा था, तो अचानक से अमित यहाँ क्या कर रहा था। तभी अमित उस काले धुएं यानी के सोनल परी मल्लिका के ऊपर एक नजर डालती हुई जल्दी ही एक बार फिर वहां से निकलकर आगे जाने लगी थी, पर आगे जाकर वो गायब हो गई थी। तब मल्लिका काफी हैरान थी और वो उसका पीछा करने लगी थी, और जैसे ही मल्लिका उसका पीछा करने के लिए गई, इस समय तारा परी अमन का हाथ पकड़कर वहां से निकल चुकी थी। और वहां से निकलकर तारा अमन को करिश्मा जी के कमरे में ले आई थी, क्योंकि करिश्मा जी इस वक्त अपने कमरे में नहीं थी। करिश्मा थी तो इस वक्त अमन के कमरे और अमित के कमरे के बीच में जो स्पेस था वहां छुपी हुई थी, ताकि उसे कोई देख ना ले। उसे बस उस काले धुएं के आने का इंतजार था। अब तारा ने जल्दी से अमन से कहा था कि वो 5 मिनट उसका यही इंतजार करे, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर तारा परी जल्दी से करिश्मा जी के पास गई थी और वहां जाकर उसे बता दिया था कि वो धुआं अब किसी भी पल उनके पास आ सकता है, क्योंकि काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे धुएं को छोड़ दिया है। अब जैसे ही करिश्मा जी ने ये सुना तो वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी और उसके कुछ मंत्रों का उच्चारण करके अपने उस तिलिस्मी कंगन पर फूंक दिया था, क्योंकि उसमें उसका जो वो काली शक्तियों के मालिक अमित का दानव ग्रहण करने वाली थी, तो इसके लिए करिश्मा जी को काफी ज्यादा शक्तियों की जरूरत थी। वो तारा परी जल्दी ही एक बार करिश्मा जी को इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन देकर वापस अमन के पास आ गई थी। वहीं अमन हैरानी से तारा को देख रहा था, क्योंकि तारा का बदलाव बार बार बदल रहा था, जबकि जब से तारा परी ने वो ब्रोच के रूप में दादा महाराज का दिया हुआ फूल अमन के ऊपर लगाया था, तब से अमन का बदलाव पूरी तरह से बदल चुका था और वो पहले वाला अमन सिंह राठौर बन चुका था। तो इसीलिए वो तारा की इस तरह की हरकत देखकर हैरान था और उसने तारा से कहा था, क्या हुआ है तारा, क्या हुआ है तारा, आप कुछ परेशान लग रही हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं।
आई विल हैंडल ऑफ दिस, अमन ने बिल्कुल अपने एकदम एरोगेंट वाले लहजे में कहा था। तभी तारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अमन से कहा था, नहीं नहीं अमन सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो एक्चुअली आज हमारा संगीत का फंक्शन है तो बस मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ। तभी अमन संगीत का नाम सुनकर थोड़ा सा चौक था, फिर अगले ही पल तारा का हाथ पकड़कर कहने लगा था, लेकिन तारा, ये तो अमित की शादी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से अमित की शादी में अपने फंक्शन वगैरह करने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अमित को ये लगे कि मैं उसके रास्ते में आ रहा हूँ या फिर उसकी सारी लाइमलाइट चुरा रहा हूँ। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा मन ही मन में खुश हो गई थी, क्योंकि वो तो किसी न किसी तरह से शादी को रोकना चाहती थी, लेकिन अब तो अमन खुद ही इस संगीत को लेकर और जो फंक्शन हुए हैं उन सब को लेकर एतराज़ जता रहा था। तब तारा ने जल्दी से अमन से कहा था, जी अमन सर, मैं तो कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप थे कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब अमन हैरान था और कहने लगा था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर समझ चुका हूँ कि ज़रूर किसी ना किसी ने मुझ पर कोई जादू किया है, लेकिन मैं अमन सिंह राठौर हूँ और मैं एक जिन महाराज भी हूँ और मैं हर तरह के जादू से बच सकता हूँ। तारा तुम जाओ, करिश्मा मॉम को बुलाकर लेकर आओ और जो भी ये फंक्शन हमारे नाम पर शुरू हुआ है ये ख़त्म करवाओ, क्योंकि मैं इन सब झंझटों में फिर से नहीं पड़ना चाहता हूँ। अमन की बात सुनकर तारा समझ चुकी थी कि अब अमन बिल्कुल भी ये रस्म वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार तारा से शादी कर चुका है और वो उसे पहले ही कह चुका है कि उसे 7 जन्मों तक एक साथ रहने के लिए इस तरह से बार बार शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तब तारा ने अमन की बात मानते हुए कहा था, ठीक है मैं अभी मॉम को बुला कर लाती हूँ, तब तक आप यहीं रहिएगा और आप इस कमरे से बाहर मत निकलिएगा। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन हैरानी से उसकी ओर देखकर कहने लगा था, लेकिन क्यों, मैं इस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल सकता हूँ। अब तारा को समझ में नहीं आया कि वो अमन को क्या जवाब दे, लेकिन फिर थोड़ा सा संभालते हुए कहने लगी थी, वो क्योंकि मॉम को बुलाकर लेकर आने वाली हूँ ना, अगर आप मुझे यहाँ इस कमरे में नहीं मिलेंगे तो शायद मॉम नाराज़ हो जाए। तभी अमन ने तारा के गाल को छूते हुए कहा था, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं इसी कमरे में रहूँगा और वैसे भी मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान करना होगा कि आखिरकार मेरे साथ मसला क्या हुआ है जो मैं इस तरह से चीज़ें भूल रहा हूँ, और जिसने भी मुझ पर कोई जादू टोना किया होगा तो मैं उसको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि वो तो कब से ये चाहती थी कि अमन को जल्दी ही इस बात का एहसास हो कि वो किसी के जादू के वश में है। फाइनली अमन को आज एहसास हुआ था। तब अमन अंसा जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गई थी, क्योंकि वो भी देखना चाहती थी कि आखिरकार करिश्मा जी तिलिस्मी कंगन का प्रयोग करते हुए किस तरह से उसे दानव को अपने वश में करता है। इसके लिए तारा ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए खुद को गायब कर लिया था। वहीं मल्लिका जैसे ही सोनल परी के वहां गई, सोनल परी के पीछे गई। और वहां पर अमित को देखकर हैरान थी। मलिका अपने जिस्मानी रूप में वापस लौट आई थी और इसीलिए वो तेजी से अब अमित के कमरे की ओर बढ़ने लगी थी। वो देखना चाहती थी कि आखिरकार अमित अपने कमरे में है या नहीं है। अगर अमित अपने कमरे में है तो फिर ये कौन था? तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में काफी सारे सवाल थे। उनका जवाब पाने के लिए जल्दी ही वो उस कमरे में जाने लगी थी। वहीं अमित, जो कि अच्छी तरह से चीज दानव को समझाने के बाद उसने उसे रिहा कर दिया था, और जोर से हंसने लगा था और कहने लगा था, बस अमन सिंह राठौर, बस केवल कुछ पल और उसके बाद तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वो जोर से हंसने लगा था। तब रीत परी उसे दानव के साथ साथ गायब होकर करिश्मा जी के पास आ रही थी। वहीं रीत परी ने देख लिया था कि इस वक्त करिश्मा जी के साथ तारा परी भी थी, लेकिन अपने गायब रूप में रीत परी जल्दी से तारा परी के पास गई थी। उसका हाथ पकड़कर कहने लगी थी, वो दानव ऑलरेडी अमित ने छोड़ दिया है और वो किसी भी पल यहाँ से गुजरता ही होगा। और अभी वो दोनों बात ही कर रही थी कि तभी अचानक से बड़े ही काले रंग का धुआं एकदम छोटे से आकार में वहां से निकलने लगा था। तारा काफी ज्यादा हैरान थी और तभी करिश्मा जी ने उस धुएं को देख लिया था और जल्दी ही उसने अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी तिलिस्मी कंगन का रुख उस काले धुएं की ओर कर दिया था। और देखते ही देखते वो काला धुआं पूरी तरह से चीखते चिल्लाते उस तिलिस्मी कंगन के अंदर चला लगा था और तिलिस्मी कंगन की रोशनी पूरे के पूरे हॉर में फैल गई थी। ऐसा लगने लगा था मानो कि एक साथ कितनी ही सारी लाइट आसपास जगमगा रहे हों। सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा था। क्या मोड़ लेगी अमन और तारा की जिंदगी, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।